पृष्ठ संख्या 316, अध्याय 31, तबले के अध्यापकों से गुफ्तगु। तबला विषय का अध्यापन करने वाले हजारों अध्यापक भारत में विद्यादान कर रहे हैं। उनके पास तबला सीखने वाले विद्यार्थियों की विविध लक्ष्य होंगे। इस संदर्भ में मैंने प्राप्य ध्येय निश्चिति और संगीत अध्यापन का व्यवसाय शीर्षक दो अध्यायों में शिक्षा के विषय में विविध तज्ज्ञों के विचारों को संकलित रूप में प्रस्तुत किया है। बहुतेरे तबला अध्यापकों को उससे मार्गदर्शन हो सकेगा। तबले की विविध परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले विद्यार्थियों को जो शिक्षा दी जाती है उसके बारे में कुछ विचार मैं यहाँ प्रस्तुत करना चाहता हूँ। अनेक शिक्षक संभवतः इन विचारों का अवलंबन करते भी होंगे, किंतु अन्य अध्यापकों को भी लाभ हो इसी उद्देश्य से उक्त विचार मैंने यहाँ प्रस्तुत किए हैं। तबले का विद्यार्थी जिस प्रकार अच्छा कलाकार होना चाहिए उसी प्रकार उसका तबला शास्त्र का अध्ययन भी व्यवस्थित रूप में होना चाहिए। जो छात्र तबले की परीक्षाओं में सम्मिलित होना चाहते हैं उनके लिए अत्यंत गहराई के साथ ऐसे दोहरे अध्यापन की तो नितांत आवश्यकता है। इसके लिए शिक्षक के लिए स्वयं कुछ बातों का सुव्यवस्थित रूप में अध्ययन करना आवश्यक है। ये बातें निम्नानुसार हैं। पहला, विद्यार्थी जिन परीक्षाओं में सम्मिलित हो रहा है उन सबके पाठ्यक्रमों का अध्ययन शिक्षक को करना चाहिए। दूसरा, तबले का शिक्षक सर्वज्ञ होता है अथवा उसे सर्वज्ञ होना चाहिए, यह धारणा या अपेक्षा उचित नहीं है, किंतु परीक्षा के लिए जो ज्ञान विद्यार्थियों को प्राप्त होना अपेक्षित है वह सब ज्ञान अधिक गहरी मात्रा में शिक्षक के पास होना जरूरी है। इसके लिए तबले की किसी एक ही पुस्तक पर निर्भर रहकर शिक्षक विद्यार्थी का मार्गदर्शन करे तो उसकी सर्वांगीण प्रगति नहीं होगी। इसके लिए तबला शिक्षक को विविध लेखकों की सांगीतिक विषयक पुस्तकों तथा विशेषतः तबले पर लिखी हुई पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए। कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों के नाम इस प्रकार हैं: ताल प्रकाश, भगवत शरण शर्मा, तबला द्वितीय संस्करण, पंडित अरविंद मुलगांवकर, पखावज और तबला, डॉक्टर अबान मिस्त्री, भारतीय संगीत में ताल और रूप विधान, डॉक्टर सुभद्रा चौधरी, भारतीय तालों का शास्त्रीय विवेचन, डॉक्टर अरुण कुमार सेन इत्यादि। पृष्ठ संख्या 317। संगीत कला विहार एवं संगीत की तत्सम विविध पत्रिकाओं का नियमित ग्राहक बनकर उनके संग्रह अंक अपने पास सुरक्षित रखने चाहिए। इसके अतिरिक्त संगीत विषयक चर्चा सत्रों एवं विविध सभाओं में नियमित रूप में उपस्थित रहकर उनके जरिए शिक्षक को आवश्यक ज्ञान अर्जित करते रहना चाहिए। इसके सिवा तबला शिक्षक को पारंपरिक वादन के साथ ही साथ वर्तमानकालीन वादन पद्धतियों से भी संपर्क स्थापित करके इन सबका लाभ विद्यार्थियों को देना चाहिए। इस प्राथमिक विवेचन के पश्चात प्रस्तुत ग्रंथ के सहारे विद्यार्थी को तबले की शिक्षा शिक्षक कैसे प्रदान करे इस संबंध में कुछ मार्गदर्शन करना चाहता हूँ। तद्विषयक सूचनाएं इस प्रकार हैं। पहला, चूंकि यह ग्रंथ प्रगत विद्यार्थियों यानी पदवी एवं पद्युत्तर विद्यार्थियों को सम्मुख रखकर लिखा गया है, अतः इसमें प्राथमिक शिक्षा के विषय में मार्गदर्शन नहीं किया गया है। उसके लिए आवश्यकतानुरूप अन्य पुस्तकों की मदद ली जानी चाहिए। दूसरा, इस ग्रंथ में विषयों का वर्गीकरण एक विशिष्ट सूत्र पद्धति से किया गया है, किंतु तबले की शिक्षा प्रदान करते समय भिन्न भिन्न विषय साथ साथ सिखाने की आवश्यकता महसूस होगी, इसलिए शिक्षक को इस ग्रंथ का शुरू में ही अध्ययन कर लेना चाहिए। अब महत्वपूर्ण अध्यायों के विषय में कुछ टिप्पणियां आगे दी गई हैं। अध्याय पहला, तबला वादन एक कला है। यह विचार विद्यार्थियों के मन में जम जाना चाहिए, किंतु उसके साथ ही साथ तबला वादन का एक शास्त्र भी प्रगत हुआ होने से उसका भी अध्ययन कला के लिए पोषक सिद्ध होता है। यह विचार भी उनके मन पर अंकित होना चाहिए। ऐसा होने पर ही तबले की कला एवं तबले का शास्त्र दोनों विषयों का संतुलित अध्ययन विद्यार्थी कर सकेंगे। यह विषय इस तरह से सिखाया जाने की आवश्यकता है कि जिससे विद्यार्थी के मन में वादन कला के प्रति ही नहीं बल्कि उसके शास्त्र के प्रति भी अभिरुचि निर्माण हो। केवल ज्ञान देना ही नहीं बल्कि छात्रों में ज्ञान के प्रति लगाव, ज्ञान की प्यास पैदा हो, यही शिक्षा का प्रधान उद्देश्य होना चाहिए। अध्याय दूसरा, ताल की संकल्पना की व्याख्याओं में आवश्यकता अनुसार कैसे कैसे बदल होते गए यह विद्यार्थियों को ज्ञात होना आवश्यक है। ये विविध व्याख्याएं ज्ञान के हेतु एवं परीक्षाओं के लिए तो उपयुक्त है ही, किंतु वर्तमान ताल की संकल्पना को पूर्णतः व्यक्त करने वाली व्याख्या का गहरा ज्ञान प्रत्येक विद्यार्थी को होना जरूरी है। पृष्ठ संख्या 318, अध्याय 4, ताल के 10 प्राण की संकल्पना का विषय सभी पाठ्यक्रमों में समाविष्ट है। ये 10 प्राण सारंग देव के समय में जिस अवस्था में थे वैसे ही आज के संगीत में न होने से उसे ऊपरी तौर पर ही बहुत से लेखकों के द्वारा हाथ में लिया गया था। विविध ग्रंथों का अध्ययन करके और मान्यवर अधिकारी व्यक्तियों से चर्चा करके इस विषय को अवगत कर लेने का प्रयत्न मैंने किया है और तत्पश्चात ही उक्त विषय से संबंधित अध्याय मैंने विस्तृत रूप में लिखा है। विद्यार्थियों के मन की असमंजस कम हो और यह विषय सही रूप में उनकी समझ में आ जाए, इसलिए उस विषय को स्वयं समझ लेना शिक्षक के लिए आवश्यक है। अगर शिक्षक इस विषय पर डॉक्टर सुभद्रा चौधरी तथा डॉक्टर अरुण कुमार सेन की पुस्तकों का अध्ययन करें तो इस विषय को वे अधिक अच्छी तरह से हाथ में ले सकेंगे। अध्याय 5, तबले के अक्षर तबले से निकलने वाले विविध नादों को सूचित करते हैं। वे अक्षर कैसे निकाले जाएं इस विषय की शिक्षा एवं मार्गदर्शन विद्यार्थियों को प्राथमिक अवस्था में ही प्राप्त हुआ होने से उसकी पुनरावृत्ति मैंने यहाँ नहीं की है। विविध अक्षरों के संयोग से शब्द बनते हैं। इन शब्दों एवं अक्षरों का वर्गीकरण मैंने कुछ निकष लगाकर किया है। वे निकष या तत्व छात्रों को अच्छी तरह समझा देने की आवश्यकता है, क्योंकि उन शब्दों से जो भाषा तैयार पैदा होती है उसी के माध्यम से तबला बोलता है। शब्दों से अपूर्ण अर्थ व्यक्त होता है, इसके विपरीत भाषा से संपूर्ण विचार व्यक्त हुआ करते हैं। तबले की भाषा में वर्णाक्षरों की योजना कैसे की गई होती है इस बात का ज्ञान छात्रों को होना जरूरी है। सादी भाषा अर्थवाही होती है, किंतु समर्थ एवं प्रतिभावान कलाकार उसी भाषा को कलात्मक शब्द योजना से और प्रभावी निकास तंत्र से सुंदर एवं वजनदार बनाया करता है। अध्याय 6, प्रगत छात्रों को संगीत की एवं तबले की विविध संकल्पनाओं एवं संज्ञाओं के बारे में गहरी जानकारी होना जरूरी है। ऐसी 60 से अधिक संज्ञाओं के संबंध में कुछ व्याख्याएं एवं विवेचन मैंने प्रस्तुत किए हैं, किंतु इन्हें अंतिम स्वरूप में मानने की जरूरत नहीं है। शिक्षकों को चाहिए कि वे संगीत की अन्य पुस्तकों से भी अधिकाधिक जानकारी एकत्रित करके विद्यार्थियों को दे दें। पदव्युत्तर परीक्षाओं में बैठने वाले एवं माध्यमिक स्तर पर अध्ययन करने वाले छात्रों के इन संज्ञाओं से संबंधित ज्ञान में लक्षणीय फर्क होना जरूरी है। इस बात को ध्यान में रखकर इस बारे में विद्यार्थियों को उचित मार्गदर्शन किया जाना चाहिए। पृष्ठ संख्या 319, अध्याय 7। प्रस्तुत अध्याय में उत्तर हिंदुस्तानी संगीत के काल लेखन के विषय में सविस्तार जायजा लिया गया है। एकाध प्रगत विद्यार्थी के लिए इस अध्याय के जरिए पीएचडी के लिए अच्छा शोध कार्य करना संभव है, किंतु महत्वपूर्ण बात यह है कि भातखंडे एवं पलुस्कर पद्धतियों में मुश्किल रचनाएं लिखना एवं पढ़ना संभव होने के लिए उचित मात्रा में विविध रचनाओं के लेखन और पठन का आवश्यक रियाज कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे रियाज से विद्यार्थियों को रचना के सूक्ष्म मात्रांश भेद पहचानने की क्षमता प्राप्त होती है और परीक्षा में उसी क्षमता को आजमाया जाता है। इससे बंदिशों का प्रस्तुतीकरण न केवल शुद्धता से होता है बल्कि कलाकार को आत्मविश्वास भी प्राप्त होता है। अध्याय 8-12। इन अध्यायों में तबले के क्रियात्मक अध्ययन पर बल दिया गया है। सोलो तबला वादन के प्रस्तुतीकरण में कौशलपूर्ण योजना के माध्यम से विविध अंगों की विविध रचनाएं चुनी जाती हैं और उन्हें सूत्रबद्ध रीति से इस तरह प्रस्तुत किया जाता है कि संपूर्ण तबला वादन मानो एक धारावाही प्रबंध ही हो, ऐसी प्रतीति श्रोताओं को हो। तबला वादक अपने वादन के माध्यम से श्रोताओं से क्या कहना चाहता है इसकी प्रतीति उसे होना जरूरी है। पेशकार, रेला, कायदा, गत टुकड़ा इत्यादि वादन प्रकारों का प्रयोजन क्या है, इन वादन प्रकरणों के गुण तत्व क्या हैं, प्रत्येक रचना की प्रकृति क्या होती है और उसे कैसे प्रस्तुत किया जाए, इस बारे में उसे ज्ञान हो तथा उसका महत्व महसूस हो, इस उद्देश्य से अध्याय 8-12 लिखे गए हैं। अध्याय 13। परीक्षाओं के लिए त्रिताल को छोड़कर अन्य तालों में बजाने की क्षमता विद्यार्थी में निर्माण होना आवश्यक है, परंतु तबले की भाषा जिस पद्धति से विकसित हुई है उसके कारण त्रिताल में सोलो वादन करना तुलनात्मक दृष्टि से आसान एवं परिणामकारक हुआ करता है। अन्य तालों में सोलो वादन करने के लिए उन तालों का, उनके खंडों का, उन तालों के सहारे अनुरूप भाषा की मदद से रचना की निर्मिति कर सकना एवं उनका प्रभावी प्रस्तुतीकरण करना, इन सबके लिए गहरे अध्ययन एवं चिंतन की जरूरत है। इस बात का एहसास छात्र को होना चाहिए। त्रिताल की रचनाओं की काट छांट करके नई बनाई रचनाओं के जरिए अन्य तालों में किया गया सोलो वादन गौण स्तर का हुआ करता है, उसका भी एहसास उक्त अध्याय के अध्ययन के जरिए विद्यार्थी को करा देना जरूरी है। अध्याय 14। सोलो तबला वादन के प्रस्तुतीकरण में गत 50 वर्षों में महत्वपूर्ण बदल हो रहे हैं। नए कलाकार का उदय होना और पुराने कलाकारों का कला के क्षितिज से दूर होना निसर्ग का नियम है, किंतु स्थियंतर का नतीजा यह हुआ है कि तबले पर प्रत्यक्षतः बजने वाली रचनाएं और उन्हें बजाने की पद्धतियां और शैलियां, इनमें पर्याप्त अंतर आ गया है। इस अंतर का निश्चित स्वरूप तबले के विद्यार्थियों को मालूम होना चाहिए। उसी तरह यह अंतर क्यों आ गया है इसकी भी कारण मीमांसा करना विद्यार्थी को आना चाहिए। इस संदर्भ में पंडित रविशंकर, उस्ताद अल्लाह रखा और उस्ताद जाकिर हुसैन का दिया हुआ योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। तबले की वादन शैली में जो अंतर आया है उससे इस त्रयी के वादन कर्तृत्व का संबंध क्या है, इसका विश्लेषण करने का प्रयत्न मैंने इस अध्याय में किया है। पृष्ठ संख्या 320, अध्याय 15। तबला वाद्य की निर्मिति और उसका विकास प्रथमतः एवं मुख्यतः सात संगत के लिए हुआ है। फलतः तबला वादक को सात संगत अच्छी तरह करना आना चाहिए। यह सात संगत मुख्य कलाकार पर हावी होने के लिए न होकर उसे पसंद आए, सर्व सामान्य श्रोताओं को पसंद आए और उससे कला का प्रस्तुतीकरण प्रभावशाली हो, ऐसी सात संगत करना आना चाहिए। इस विषय पर प्रस्तुत अध्याय में गहराई के साथ विवेचन किया गया है। छात्रों के मन में सोलो जितनी ही सात संगत के प्रति रुचि पैदा हो, इस बात पर गुरु को ध्यान देना चाहिए और प्रभावी सात संगत का तंत्र आत्मसात करने के लिए विशेष प्रयत्न करते रहना चाहिए। इसी दृष्टि से इस अध्याय का अध्यापन हो। अध्याय 16। उपज अंग के बारे में बहुत कुछ बोला जाता है और उपज अंग का अवलंब करने वाले कलाकारों को हम महान प्रतिभावान कलाकार के रूप में संबोधित करते हैं। उपज अंग का कौशल निसर्ग प्रदत्त देन हो सकती है, किंतु वह प्रत्यक्ष साध्य भी है। यह विचार विद्यार्थियों के मन पर पक्केपन के साथ अंकित करना अत्यावश्यक है। कम से कम समय में यानि कुछ ही क्षणों में बिना विलंब विचार करके पूर्ण और अपूर्णांक मात्राओं के आकारों में निश्चित एवं उचित अलग अलग शब्द समूहों का उपयोग करना सीखना और उस कौशल को आत्मसात करना उपज अंग का महत्वपूर्ण रहस्य है। प्रभावी सात संगत में और विशेषतः कथक नृत्य तथा उत्तर हिंदुस्तानी वाद्य संगीत में इस प्रभावी सात संगत के तंत्र का कलात्मक उपयोग करना आना चाहिए। यह विचार तबले के विद्यार्थियों को समझाकर उसे उनके मन पर अंकित कर देना चाहिए। इस प्रक्रिया के जरिए ही ऐसे कलाकार प्रभावी सात संगत करने लगेंगे। इस विचार को ध्यान में रखकर उपज अंग का कौशल कैसे प्राप्त किया जा सकता है, उस बारे में कुछ विचार उदाहरण के साथ इस अध्याय में प्रस्तुत किए गए हैं। पृष्ठ संख्या 321, अध्याय 17-23। सभी तबला वादक मानते हैं कि तबला वादन एक ललित कला है, उसमें काव्य होता है और वह काव्य सुंदर होता है, परंतु केवल तबला वादन ललित कला है ऐसा कहने पर तबला वादन में जो जो बजता है वह सब सुंदर और काव्यमय ही है, ऐसा अपने आप घटित नहीं होता। तबले के विद्यार्थियों के लिए सर्वसाधारणतया सौंदर्य तत्व कला संगीत एवं तबला वादन में निहित सौंदर्य की पहचान करा देनी चाहिए। तबले का कोई भी प्रस्तुतीकरण नाद मधुर लय युक्त और परिणाम कारक होना ही चाहिए। यह विचार तबले के छात्र के मन पर अंकित किया जाना चाहिए। तबले के छात्र को छंदोबद्ध काव्य का भी प्राथमिक परिचय करा देना चाहिए। उसी तरह छंद वृत्त मात्रा साथ ही साथ शेरो शायरी की पहचान और उसे व्याकरण के संस्कार विद्यार्थियों पर कर देने से तबले की रचनाओं में निहित सौंदर्य से वह परिचित हो जाएगा। विविध शब्दालंकारों का भी परिचय इन विद्यार्थियों को करा देने की जरूरत है। इस विषय का अध्ययन करने के लिए और तबले के सौंदर्य का तीव्र एहसास विद्यार्थियों को होने की दृष्टि से प्रस्तुत ग्रंथ के उक्त अध्यायों में पर्याप्त मार्गदर्शन किया गया है। मुझे विश्वास है कि इस भाग का केवल छात्रों को ही नहीं बल्कि तबला वादक कलाकारों को भी पर्याप्त लाभ होगा। अध्याय 24। हर एक घराने की अपनी एक अलग वादन शैली होती है। इस वादन शैली का निकास एक दृष्टि से हर घराने का एक रहस्य होता है और उसे अच्छी तरह अवगत करके इस विशिष्ट शैली के अपने निकास के तंत्रानुसार अध्ययन किया गया हो, तभी वह वादन शैली विद्यार्थी के बस में होती है। किंतु घराना यानी केवल वादन शैली नहीं है, यह विचार भी विद्यार्थियों को ज्ञात होना चाहिए। हर एक घराने का अलग अलग वैचारिक अनुशासन होता है। इस बात की जानकारी भी प्रगत छात्र को होना आवश्यक है। मुझे दिल्ली और अजराणा घराने की तालीम प्राप्त होने से उक्त दो घरानों के बारे में मैंने विस्तारशह एवं गहराई के साथ लिखा है, किंतु इसलिए वे घराने महत्वपूर्ण हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है। अन्य घरानों का गहरा अध्ययन न हो सकना यह मेरी कमजोरी है। सब घराने और उनकी वादन शैलियां अलग अलग कारणों के लिए श्रेष्ठता में समान हैं। घराना श्रेष्ठ कनिष्ठ नहीं होता, कलाकार श्रेष्ठ कनिष्ठ हो सकता है, वह भी अपने गुणों पर, वादन कुशलता पर। इस बात को ध्यान में रखकर शिक्षक को तदनुसार विद्यार्थी को सिखाना चाहिए। तबले के विद्यार्थी के सामने क्या तबले के घराने नष्ट हों अथवा घराने की क्या जरूरत है इत्यादि बुद्धि भेद करने वाले प्रश्न उपस्थित न करना ही हितकर है, क्योंकि विद्यार्थी दशा की अपरिपक्व बौद्धिक अवस्था में उक्त विद्यार्थी विविध शैलियों का शास्त्रीय दृष्टि से मनःपूर्वक अध्ययन करना ही नहीं चाहेगा। उसकी अंतिम विद्यार्थी दशा में उसकी वादन क्षमता बढ़ने के बाद और विचारों से परिपक्व होने पर घरानों के भविष्य के बारे में वह स्वयं निर्णय करे। अध्याय 25। प्रस्तुत अध्याय में मैंने कुछ गिने चुने श्रेष्ठ तबला वादकों की ही वादन शैलियों एवं उनके व्यक्तित्व के विषय में जानकारी प्रस्तुत की है। उक्त विषयों को मैंने केवल इसलिए नहीं चुना है कि वे उत्कृष्ट तबला वादन किया करते थे या हैं, बल्कि इसलिए कि उन्होंने तबला वादन कला को अधिक समृद्ध करने में अपना अपना योगदान दिया है। अर्थात इसका मतलब यह भी नहीं कि केवल उन्हीं कलाकारों ने यह योगदान दिया है। मैंने स्थानाभाव के कारण ही उक्त सीमित कलाकारों को ही चुना है। अध्याय 26-29। तबला वादन शिक्षा गांव-गांव में दी जाती है। बहुत से तबला शिक्षक अनुभवी ज्ञानी और कलाकार शिक्षक हैं, किंतु अन्य अनेक शिक्षकों के पास शिक्षण पद्धति के बारे में आवश्यक ज्ञान न होने की संभावना है। उनका विद्यादान अधिक प्रभावी एवं छात्रों के लिए लाभप्रद हो, इस दृष्टि से अध्याय क्रमांक 26-29 तक में उनके लिए उपयुक्त मार्गदर्शन किया गया है। प्रथमतः विद्यार्थी को तबले का अध्ययन और रियाज कैसे करना चाहिए उस संबंध में विस्तृत चर्चा करके तद विषयक मार्गदर्शन भी किया गया है। तत्पश्चात प्राप्य ध्येय निश्चिति शीर्षक अध्याय में प्रभावी शिक्षा पद्धति की योजना मैंने संक्षेप में समझा दी है। विद्यार्थी केवल पाठ्यक्रम पूरा करे यही लक्ष्य न रहकर वह वादन की परिणाम कारकता कैसे साध्य करे इस संबंध की योजना के विषय में शिक्षकों के लिए एक नई आचार विचार योजना प्रस्तुत की गई है। विद्यार्थी ग्राहक है और ग्राहक की जरूरत क्या है इसकी सही जानकारी गुरु को होनी चाहिए। सभी छात्रों की आवश्यकताएं एक जैसी न होने से शिक्षक को प्रत्येक छात्र की प्राथमिक महत्वपूर्ण जरूरत कौन सी है यह जान लेना चाहिए और तदनुसार उस जरूरत को पूरा करने वाली शिक्षा छात्र को दी जानी चाहिए। इसीलिए इसी अध्याय में मानवीय जरूरतों के विषय में जो संक्षिप्त विवेचन किया गया है उसका अध्ययन गुरु को अवश्य करना चाहिए। तबले का शिक्षक गुरु अपना व्यवसाय कैसे करे इस संबंध में शिक्षा क्षेत्र के तज्ज्ञों के विचार मैंने संगीत अध्यापन का व्यवसाय शीर्षक 28वें अध्याय में प्रस्तुत किए हैं। उनका भी मनन शिक्षक करे तो उनकी शिक्षण प्रक्रिया निश्चित दिशा में कार्यरत होकर अपेक्षित परिणाम साधने वाली सिद्ध होगी और विशेषतः संगीत शिक्षा से गुरु को अधिक मात्रा में आनंद एवं समाधान प्राप्त हो सकेगा। विद्यार्थी की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसकी कला की यशस्विता पाठशाला कॉलेज के यश की तरह 40-50% प्राप्तांकों से होना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि विद्यार्थी ने कला की शिक्षा को स्वेच्छा से स्वीकार लिया है। इसलिए उक्त कला में उसे अत्युच्च यश प्राप्त कर लेना चाहिए। और उसके लिए यश यानी क्या, यश प्राप्त करने के लिए कौन से वे घटक हैं जो विद्यार्थी के बस में हैं और जिनको साध्य करने से उसे अच्छा यश प्राप्त होगा। यश प्राप्ति के लिए आवश्यक घटकों में से जो घटक विद्यार्थी के पास नहीं होते उनकी भी जानकारी विद्यार्थी को होना चाहिए। यश प्राप्ति के लिए आवश्यक ऐसे विविध घटकों के विषय में सविस्तार चर्चा अध्याय क्रमांक 29 में मैंने की है। यह चर्चा अधिक अर्थपूर्ण हो इसलिए स्थान स्थान पर महान तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन की यशस्विता के विषय में की गई कारण मीमांसा भी छात्र के लिए निश्चय ही लाभदायक सिद्ध होगी। इन विचारों का सार उक्त अध्याय के अंत में यश चक्र की आकृति के माध्यम से निर्देशित किया गया है। उसमें निर्दिष्ट विचार भी विद्यार्थियों को जान लेने चाहिए। अध्याय 30, मार्गी ताल, कुछ देशी ताल और गिने चुने वर्तमान संगीत के ताल तथा उनके ठेकों के बारे में जानकारी इस अध्याय में मिलती है। इसमें चाचपुट और चच्चतपुट मार्गी तालों के छंदों की अनुभूति आज के भक्ति संगीत में कैसे मिलती है इसके बारे में किया गया अनुमान विचारणीय है। कुछ महत्वपूर्ण विस्तारक्षम रचनाएं और उनके घड़न के बारे में किया गया विवेचन विद्यार्थियों को निश्चित लाभदायक होगा, ऐसा मेरा विश्वास है।